डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो द जोहानिन एपिस्टल्स सत्र 5 खंड 1 एक यूहन्ना पूर्ण पैमाने पर विश्वास केंद्रीय बोझ एक यूहन्ना 1:01 से 2:06। यह डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो और जोहानिन एपिस्टल्स बैलेंसिंग लाइफ इन क्राइस्ट पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 5 एक जॉन फुल स्केल फेथ सेक्शन 1:01 से 2:06 सेंट्रल बर्डन है। आज हम एक जॉन पर अपना नजरिया शुरू करते हैं और पिछले व्याख्यानों में हमने 1, 2 और 3 जॉन के आसपास के परिचयात्मक मुद्दों पर विचार किया है और 2 व्याख्यान हैं जो मैंने 1, 2 और 3 जॉन में विषयों धार्मिक विषयों पर दिए हैं और फिर मैंने 3 जॉन पर 1 व्याख्यान दिया। मैंने इसे एक विश्वसनीय मित्र को पत्र कहा, वह मित्र गयुस था, और फिर 2 यूहन्ना पर 1 व्याख्यान। मैंने इसे एक विश्वसनीय चर्च को पत्र कहा। यह जॉन का एक चर्च को पत्र था जिसके बारे में मुझे लगता है कि गयुस शायद उसका हिस्सा था और उसे न केवल चर्च को पत्र 2 यूहन्ना बल्कि एक और पत्र 1 यूहन्ना भी मिला होगा जिसे जॉन ने उस चर्च में और शायद एशिया माइनर के पूरे क्षेत्र के चर्चों में एक आवेदन पढ़ने के लिए लिखा था। तो हम अगले व्याख्यान पर आते हैं जो 1 यूहन्ना को देखने से शुरू होने वाला है और मैं इस श्रृंखला को मसीह में जीवन को संतुलित करना कह रहा हूँ। ये तीनों पत्र एक साथ मसीह में एक ऐसे जीवन को मानते हैं और पुष्टि करते हैं जो विभिन्न कारकों के बीच संतुलन है और मैं इसके बारे में बस 1 मिनट में बात करूंगा, लेकिन जैसा कि हम 1 यूहन्ना को देखते हैं मैं इसे पूर्ण पैमाने पर विश्वास कह रहा हूँ। 1 यूहन्ना मसीह में पूर्ण पैमाने पर विश्वास करने ईश्वर पिता पुत्र और आत्मा में विश्वास करने के बारे में एक पुस्तक है और पिता पुत्र और आत्मा सभी का उल्लेख 1 यूहन्ना में किया गया है और मैं बस 1 मिनट में प्रार्थना करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम 1 यूहन्ना के बारे में कुछ बहुत ही उल्लेखनीय बात पर ध्यान देकर शुरू करें और यह यूहन्ना के सुसमाचार की एक विशेषता भी है। जब आप शब्द संज्ञा और प्रेम के लिए क्रिया संज्ञा अगापे क्रिया अगापाओ की घटनाओं को ग्राफ में दर्शाते हैं तो आपको एक ग्राफ मिलता है जो इस तरह दिखता है और बाईं ओर आप मैथ्यू को देखते हैं और फिर आप मार्क ल्यूक जॉन को देखते हैं और जॉन के ऊपर आप देखते हैं कि स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर यह बहुत नीचे रहता है। इफिसियन थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन आप 1 जॉन पर जाते हैं और यह फिर से ऊपर की ओर बढ़ता है और वे स्तंभ जो इतने ऊंचे हैं वे जॉन और 1 जॉन के लिए स्तंभ हैं और वे प्रेम के संदर्भ की आवृत्ति प्रेम शब्द के उपयोग को दर्शाते हैं। अतः आपने सुना होगा कि यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहा गया है और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे यूहन्ना के सुसमाचार में प्रिय प्रेरित कहा गया है बल्कि इसलिए है कि यदि आप उसके लेखन की तुलना संपूर्ण नए नियम के किसी अन्य लेखन से करें और मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण नए नियम में और मुझे पूरा विश्वास है कि पुराने नियम में भी इस बात की कोई तुलना नहीं है कि यूहन्ना ने कितनी बार इस शब्द का प्रयोग किया है और परमेश्वर से प्रेम करने के इस विचार या परमेश्वर के संबंध में प्रेम संज्ञा पर वापस लौटा है। तो आइए प्रार्थना में रुकें और हम परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने में आपने जो प्रेम दिखाया है उसके लिए धन्यवाद और इस पत्र के लिए धन्यवाद जो इतनी तीव्रता से सघनता से और विस्तार से उसकी गवाही देता है और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हमारे साथ होने से हम इस संदेश को कुछ हद तक न्याय दे सकें जो इस पत्र को पढ़ने और सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए है। हम मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम 1 यूहन्ना को कैसे विभाजित करते हैं, हम इसे कैसे विभाजित करते हैं? और निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा की परंपरा में हमारे पास अध्याय और छंद हैं और यह ऐसा करने का एक तरीका है। जब मैंने 1 यूहन्ना का विस्तार से अध्ययन किया है तो मैंने ग्रीक पाठ में जो ध्यान दिया है आप देख सकते हैं कि पूर्वी चर्च ग्रीक चर्च कई शताब्दियों में जब लैटिन चर्च को ग्रीक पाठ नहीं पता था, ग्रीक चर्च जिसे अक्सर बीजांटिन चर्च कहा जाता है, वे पूरे समय ग्रीक का उपयोग कर रहे थे। वे ग्रीक भाषी चर्च थे। और इससे पहले कि हमारी अंग्रेजी भाषा की परंपरा में अध्याय विभाजन होते, या यहाँ तक कि वल्गेट की लैटिन भाषा की परंपरा में भी उनके पास विभाजन थे, और उन्होंने एक यूहन्ना को 7 भागों में विभाजित किया था। और पहला भाग बेशक 11 में शुरू हुआ, और दूसरा अध्याय 2 में शुरू हुआ, तीसरा भी अध्याय 2 में शुरू हुआ, और इसी तरह आगे भी। तो आपके पास 7 खंड हैं। खंडों को बनाने का एक कारण यह था कि वे उनका संदर्भ ले सकें, जैसे कि खंड 3 या 4 या 7 या जो भी हो, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उन्होंने चर्च में इस्तेमाल किए जाने वाले पाठों को चिह्नित किया था। बीजांटिन चर्च अपनी पूजा में बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, और इसलिए इन्हें लेक्शनरी रीडिंग या लेक्शनरी मार्कर कहा जाता है। और पहला भाग, मैं इसे केंद्रीय बोझ कह रहा हूँ, ईश्वर प्रकाश है। केंद्रीय बोझ पत्र ईश्वर की प्रकृति है, और मुझे लगता है कि जॉन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक ऐसी स्थिति के लिए लिख रहा है जिसमें रोमन दुनिया है। हर कोई ईश्वर और देवताओं में विश्वास करता है, के साथ बहुत सारा अंधकार जुड़ा हुआ था, और ग्रीको रोमन धर्म रोमन साम्राज्य में धर्म में शास्त्र नहीं थे, और यह नैतिकता या आचार विचार के बारे में बात नहीं करता था। यह धार्मिक अनुभव के बारे में बात करता था, और यह आपके स्वास्थ्य, आपकी यात्रा या किसी रिश्ते के लिए किसी देवता या देवी से मदद पाने के बारे में बात करता था। लेकिन आपका किसी देवता या देवी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। ये देवता या देवी आपसे व्यक्तिगत रूप से संवाद नहीं करते थे। वे निश्चित रूप से अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर के अर्थ में उद्धारकर्ता देवता नहीं थे, जिन्होंने वादा किया और जिन्होंने पृथ्वी बनाई और जो विश्वास के व्यक्तिगत संबंध में आते हैं और लोगों को बचाते हैं और दुनिया को मुक्ति दिलाते हैं। ग्रीको रोमन दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने एक यूहन्ना लिखते समय, जब वह अपने परिचय के बाद अंततः यह कहते हुए एक बिंदु पर पहुंचता है, यह वह संदेश है जो हमें प्राप्त होता है और जिसे हम तुम्हें बताते हैं। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। मैं इसे एक यूहन्ना का मुख्य बोझ कह रहा हूं, और हम बस एक मिनट में इस पर आएंगे। हालांकि 2 अन्य बातें हैं जिन पर मुझे बात करनी है। एक है यूहन्ना की वह अवधारणा जिसे मैं सुसमाचार पहचान कहूंगा। वह उन लोगों को लिख रहा है जिन्हें हम ईसाई कहेंगे। वह उन्हें कभी ईसाई नहीं कहता। वह उन्हें छोटे बच्चे या बच्चे कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद को यह याद दिलाना अच्छा होगा कि यूहन्ना ईसाई पहचान और ईसाई अनुभव को कैसे समझता है, क्योंकि यह उसके सुसमाचार के अध्याय 1 में संक्षेप में बताया गया है और हम इसे एक यूहन्ना में बार बार देखेंगे। वह ईश्वर से जन्म लेने की बात करता है और वह ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम जैसी चीजों के बारे में बात करता है, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह कैसे सोचता है, कि यह कैसे घटित होता है, और यह हम कह सकते हैं सबसे पहले मसीह के नाम पर विश्वास करने के माध्यम से होता है। और एक यूहन्ना, क्षमा करें, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 श्लोक 12 कहता है, उन सभी को जिन्होंने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, और यही यीशु की सच्ची पहचान है, ईश्वर का पुत्र जो पाप के लिए मरा और जी उठा, उन सभी को जिन्होंने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार या अधिकार दिया। इसलिए ईश्वर उनके पिता बन जाते हैं, वे उनके बच्चे बन जाते हैं, वे भाई बहन बन जाते हैं, वे मसीह में विश्वास के माध्यम से एक पारिवारिक समुदाय बन जाते हैं। लेकिन फिर यह ईश्वर की संतान होने के इस विचार को और परिभाषित करता है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ हम करते हैं, जैसे हम स्वेच्छा से करते हैं और हम विश्वास करते हैं और हमने इसे एक तरह से किया है। हमने जो किया है उससे हमने खुद को ईश्वर की संतान बना लिया है। लेकिन फिर अगले श्लोक में वह कहता है, ये बच्चे खून से नहीं, नहीं जातीयता से, नहीं शरीर की इच्छा से पैदा हुए थे, किसी ने बच्चा पैदा करने का फैसला किया था, नहीं मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से पैदा हुए थे। और यहाँ आपको वह मिल गया है जिसे कुछ लोग संगतिवाद कहते हैं। आपको यह विचार मिल गया है कि हमारे पास एजेंसी है और हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम ईश्वर के बच्चे बन जाते हैं। दूसरी ओर ईश्वर के पास इससे भी बड़ी एजेंसी है और हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर में हमारे विश्वास के पीछे कुछ और अधिक मौलिक और रहस्यमयी काम कर रहा है, जिसके द्वारा हम सुनते हैं और इसे दर्ज करते हैं और हम सुसमाचार संदेश पर विश्वास करते हैं, जबकि हमारे आसपास के अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। कई बार परिवारों में आपको एक भाई या बहन ऐसा मिलता है जो विश्वास करता है लेकिन दूसरा नहीं करता है, या विवाह में आप दो लोगों को शायद एक ही चर्च में जाते हुए पाएंगे और उनमें से एक सुसमाचार सुनता है और ईसाई बन जाता है, दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता है और वे विश्वास नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने विश्वास न करने का फैसला किया था। यह उनका निर्णय है और यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और खासकर उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, वे इसका श्रेय नहीं ले सकते और कह सकते हैं, ठीक है, मैंने खुद को बचा लिया क्योंकि मैंने वह काम किया जो मुझे योग्य बनाता है। यह परमेश्वर से क्षमा के उपहार के योग्य है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार की पहचान को परमेश्वर के उपहार, परमेश्वर के कार्य के रूप में मानता है। यह परमेश्वर की इच्छा है जो किसी तरह सुसमाचार संदेश के माध्यम से काम करती है, जो विश्वासियों को वह दर्जा देती है जिसके वे हकदार नहीं हैं। हम ईश्वर की क्षमा के पात्र नहीं हैं, लेकिन वह हमें यह प्रदान करता है और वह हमें प्राप्त करने और हमें रूपांतरित करने तथा हमें इस परिवार में जोड़ने के लिए जो आवश्यक है वह करता है, जहां उसकी इच्छा है कि हम उसकी महिमा के लिए जिए। इसके परिणाम यहां मेरे छोटे से हैंडआउट पर बुलेट पॉइंट हैं, मसीह को प्राप्त करना दिव्य प्रेम की एक चौंका देने वाली गुणवत्ता से और उसमें परिणामित होता है, और हमने इसे ग्राफ में देखा। आप जानते हैं, हम वास्तव में ईश्वर को तब तक नहीं जानते जब तक हम इस सुसमाचार संदेश के माध्यम से उसके साथ एक रिश्ते में नहीं आते, लेकिन जब हम ईश्वर से मिलते हैं तो अचानक ईश्वर का एक ऐसा प्रेम होता है जिसके लिए हम पहले अजनबी थे, जो हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है और हमारे जीवन को बदल देता है, और यह एक आजीवन प्रक्रिया है। और जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो न केवल हमें प्रेम के नए संसाधन प्राप्त होते हैं, बल्कि हम एक ऐसी तस्वीर में प्रवेश करते हैं जिसे हम एक बहुत ही जटिल चार्ट के साथ चित्रित कर सकते हैं, और मुझे अब अपने पिछले चार्ट पर वापस जाना है जिसमें एक पृष्ठ पर प्रेम था और दूसरे पृष्ठ पर एक तस्वीर है, और मुझे इस फाइल को बंद करने दें क्योंकि कभी कभी यह रुक जाती है और यह बस रुक गई है और मैं इसे फिर से शुरू करूंगा। हम बस एक सेकंड लेंगे और फिर मैं इसे उतना बड़ा चित्र बना सकता हूं जितना यह मुझे बनाने की अनुमति देगा। यह बड़ा है और यह उतना ही बड़ा है जितना हम इसे बना सकते हैं। तो यह संतुलित ईसाई जीवन की एक तस्वीर है और मुझे इसे समझाने दें। एक बाएं दाएं रेखा है और वह विश्वास की रेखा है या आस्था की रेखा है या सिद्धांत की रेखा है, सुसमाचार संदेश में क्या है इसकी रेखा है, और हम बाइबल में शब्दों को याद कर सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। तो उस क्षैतिज रेखा के बाईं ओर वह अविश्वास होगा, और इसलिए आप एक ईसाई नहीं हैं, आप विश्वास में नहीं हैं, लेकिन आप सुसमाचार संदेश सुनते हैं और कल्पना करते हैं कि वह वेक्टर एक तीर है। आप अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते हैं और इसलिए आप ईसाई हैं। आप विश्वास के माध्यम से बचाए जाते हैं। आप सुनते हैं कि मसीह ने क्या किया और आप इसे स्वीकार करते हैं और आप खुद को उसके हवाले कर देते हैं और आप बचाए जाते हैं। लेकिन हमें जीवन में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बाइबल में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है यह देखने के लिए कि कभी कभी एक समस्या होती है कि लोग विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन फिर उनका जीवन उनके द्वारा कहे गए विश्वास के साथ तालमेल नहीं रखता है। और इसलिए आइए एक ऊपर नीचे की रेखा बनाएं और उस रेखा को कार्य कहें, और वह आज्ञाकारिता की रेखा है, वह नैतिकता की रेखा है। और इसलिए यदि आप एक्स और वाई लेते हैं तो आपको चार चतुर्थांश मिलते हैं, और जिस चतुर्थांश में आप रहना चाहते हैं वह विश्वास में दाईं ओर का चतुर्थांश है और कार्यों में ऊपर का चतुर्थांश है। तो वह ऊपरी दाया चतुर्थांश वह चतुर्थांश होगा जिसमें आप रहना चाहते हैं। आप उस चतुर्थांश में नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि आपके पास काम तो होगा लेकिन विश्वास नहीं होगा। आप इस चतुर्थांश में नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि आपके पास विश्वास तो होगा लेकिन काम नहीं होगा। आप यहां पर नहीं होते क्योंकि आपके पास कोई विश्वास या कार्य नहीं है। और इसलिए शायद आपने खुद इस बारे में सोचा हो, क्योंकि जब आप जेम्स की पुस्तक पढ़ते हैं तो वह विश्वास की प्रकृति के बारे में बात करता है और कैसे विश्वास और कार्यों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, और यह सब बहुत सच है। लेकिन कई साल पहले, विशेष रूप से कॉलेज के छात्रों के साथ काम करते हुए, कई बार कॉलेज के छात्र विश्वास के आश्वासन के बारे में बात करना चाहते थे, और वे बहुत अच्छे बच्चे थे और वे बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके पास आश्वासन नहीं था। और मैं पहाड़ी उपदेश पढ़ रहा था, और पहाड़ी उपदेश में एक जगह है जहां यीशु कहते हैं, यह मैथ्यू 7 है मुझे लगता है, वह कहते हैं, उस दिन कई लोग मुझसे कहेंगे प्रभु प्रभु। खैर, वहां एक क्षैतिज रेखा है। प्रभु प्रभु, यही विश्वास है। क्या हमने महान कार्य नहीं किए? खैर, यह काम करता है। तो यह एक्स और वाई है, और वे कुछ चमत्कारों की सूची बनाते हैं जो उन्होंने किए और महान कार्य जो उन्होंने उसके नाम पर किए। तो विश्वास और कार्य। लेकिन फिर यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो यह बात मेरे दिमाग में तुरंत गूंज उठी, न केवल छात्रों के साथ काम करने के लिए बल्कि पादरी के काम के लिए भी, जहां आपके पास ऐसे लोग हैं जो नैतिक लोग हैं और वे चर्च जाते हैं, उनकी ईसाई मान्यताएं हैं, और आप जानते हैं वे बैंक नहीं लूटते या किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन उनमें ईश्वर के लिए कोई वास्तविक जुनून नहीं है। रिश्ते की रेखा है एक निजी रिश्ता। कि ईसाई होने के लिए आपको ये तीन चीजें करनी होंगी, आपको विश्वास करना होगा और आपको काम करना होगा और आपको प्रेम करना होगा। मैं इसे परमेश्वर के कार्य के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। जब परमेश्वर अपने वचन के जरिए, मसीह के संदेश के जरिए हमें बचाता है, बाइबल सिखाती है कि आप जानते हैं परमेश्वर हमारे हृदयों को परिवर्तित करता है, और परमेश्वर के इस कार्य के द्वारा जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब परमेश्वर हम पर पूरा दबाव डाल रहा है। वह हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है, और हम उसकी आज्ञाओं को सीखना शुरू करते हैं, शायद उन तरीकों से जिन्हें हमने पहले नहीं सीखा था। हम खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन अचानक हमारा परमेश्वर के साथ एक आंतरिक संबंध भी बन जाता है। आप जानते हैं, हम पहले भी ईश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन अब वह हमारे दिमाग में है, वह हमारे दिल में है। हम खुद को ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ने की चाहत रखते हैं, और यही ईसाई जीवन है। यह सुसमाचार संदेश का कार्य है, जिसके माध्यम से विश्वास हमारे जीवन में एक ऐसे तरीके से आता है जैसा पहले नहीं था। एक ऐसा विश्वास जो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को साकार करता है। और जीवित परमेश्वर अपनी आज्ञाओं और हमारे साथ अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें उन चीजों को करने की आंतरिक इच्छा देता है जिन्हें हम उसे प्रसन्न करने के लिए सीख रहे हैं और जिससे वह हमसे प्रसन्न होता है। और यह भी उसकी सेवा है और अन्य लोगों की सेवा है। और यह सब एक संबंधपरक संदर्भ में है। इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है जो निश्चित रूप से यीशु में इस धरती पर आया है। और इस बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि जब यीशु कहते हैं तो उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने ऐसा नहीं किया? और मैं कहूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हम उसे जानते हैं। मैं इसे एक सिद्धांत कहता हूं, वाई कार्य है, और मैं इसे जेड निर्देशांक कहता हूं। जेड निर्देशांक प्रेम है। जेड निर्देशांक पारस्परिक संबंधों का निर्देशांक है। जब हम मसीह के सामने खड़े होते हैं तो वह यह नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, क्योंकि हम उसे लंबे समय से जानते हैं। हम विश्वास के माध्यम से उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव आता है, और इसका परिणाम प्रेम की अभिव्यक्ति भी होता है। अब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर छाई हुई हैं। और जब हम एक यूहन्ना को बार बार देखते हैं तो हम देखेंगे कि वह प्रेम के बारे में बात कर रहा है, आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है और विश्वास के बारे में बात कर रहा है। और अगर आप आयतों को अलग अलग करके देखें तो आप इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं, ओह, यह सब प्रेम के बारे में है। बस यही मायने रखता है प्रेम। लेकिन फिर एक और आयत कहती है जो मायने रखता है, वह है काम। आपको बस अपने भाई से प्यार करना है, उसकी मदद करनी है और उसे देना है। और फिर दूसरी आयत कहती है, यह विश्वास है। और एक यूहन्ना में यह एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि वह खुद का ही विरोध कर रहा है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी वह इन तीनों में से किसी एक के बारे में बात करता है तो वह अन्य दो को भी मान लेता है। वह परमेश्वर के कार्य को इस तरह से मान रहा है कि विश्वास, परिवर्तित व्यवहार और परमेश्वर के साथ संबंध के माध्यम से हम जीवन की एक अलग गुणवत्ता जी रहे हैं। हम उस व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं जो ईश्वर से जन्मा है, और हम हमेशा जन्मा कहते हैं। और यह सही है, क्योंकि इसका संबंध, आप जानते हैं, हमारे ईश्वरीय माता पिता, हमारे पिता बनने से है। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि वहन किया गया, आप जानते हैं, साथ ले जाया गया, प्रेरित किया गया, सूचित किया गया, भरा गया। और भगवान हमारे जीवन में अपने उद्धार का काम कर रहे हैं जैसे हम अपनी तरफ से अपने उद्धार का काम करते हैं। हमारे पास एजेंसी है, हमारे पास जिम्मेदारी है। तो यह एक निष्क्रिय रिश्ता नहीं है और यह एक सक्रिय रिश्ता है। लेकिन यह परमेश्वर कौन है और उसकी शक्ति और उसकी प्रबल इच्छा के कारण काम करता है, क्योंकि वह अपना कोमल प्रेमपूर्ण हाथ हम पर रखता है और सुनिश्चित करता है कि हम उस दिशा में जाएं जो हमने कहा था कि हम चाहते थे जब हमने कहा था, मैंने यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया है। इसलिए मैं इस बॉक्स पर बहुत अधिक समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन यदि आपने इसका अनुसरण किया तो सैद्धांतिक क्षैतिज तल के ऊपर 4 डिब्बे हैं और नीचे 4 हैं। तो आपके पास 8 डिब्बे हैं जिनमें आप रह सकते हैं, और एक डिब्बे में आपके पास प्रामाणिक विश्वास होगा, आपके पास उचित आज्ञाकारिता होगी और आपके पास एक रिश्ता होगा, आपके पास प्रेम होगा। आप जानते हैं यही सच्चे आस्तिक का स्थान है। लेकिन जब आप प्रथम यूहन्ना का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार उनका तात्पर्य यह है कि लोगों में सच्चा विश्वास नहीं है। आप जानते हैं वे इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु देह में आए थे। यह विश्वास की समस्या है। वे नैतिक लोग हो सकते हैं, वे आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं और प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वे यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं। यह एक समस्या है। यह हो सकता है कि उनका विश्वास विश्वसनीय हो और वे बहुत आज्ञाकारी लोग हों, लेकिन वे अपने भाई से प्रेम नहीं करते। कुछ आयतों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दुनिया की सारी चीजें रखता है और अपने भाई की परवाह नहीं करता, वह व्यक्ति झूठा है। खैर, यह ईसाई विशेषता नहीं है। यहाँ एक और बॉक्स है, यह यहाँ मानचित्र पर अष्टक 4 है, जहाँ आपको एक विश्वसनीय विश्वास मिला है, और हो सकता है कि आप एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन आप ईश्वर की अवज्ञा कर रहे हैं। आप जानते हैं आप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। यह एक समस्या है। एक पांचवा क्षेत्र है जहां प्रेम सच्चा प्रतीत होता है, लेकिन वहां कोई ईसाई विश्वास नहीं है और कोई वास्तविक आज्ञाकारिता नहीं है। और आप जानते हैं कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो धार्मिक होते हैं और बहुत प्यार करने वाले होते हैं। वे बहुत ही दयालु लोग होते हैं, और वे कुत्ते हो सकते हैं, और वे लोग हो सकते हैं, और वे गरीब हो सकते हैं, या आप जानते हैं सभी प्रकार के लोग हैं। वे बस प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वे ईसाई धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, कम से कम किसी भी गंभीर तरीके से, सैद्धांतिक रूप से नहीं। और उनका नैतिक जीवन ईसाई दृष्टिकोण से अव्यवस्थित हो सकता है, लेकिन उनमें प्रेम है। और फिर उनके पास वही स्थिति हो सकती है जहां आपके पास आज्ञाकारिता है और कोई विश्वास नहीं है और प्रेम की कमी है। मुझे वह बम्पर स्टिकर पसंद है जो मैंने कुछ साल पहले देखा था। इसमें कहा गया है, धर्म से पहले कर्म, जिसका मतलब है कि मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि कोई क्या मानता है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि आप कैसे रहते हैं। और आप जानते हैं यही वह समय होता है जब आप लोगों से मिलते हैं। यही बात मायने रखती है, यही बात मायने रखती है। लेकिन जॉन के लिए ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब सुसमाचार किसी व्यक्ति के हृदय और इच्छा को प्राप्त करता है, तो परमेश्वर इस तरह से प्रवेश करता है कि वह मसीह और उसके द्वारा किए गए कार्यों में हमारा भरोसा बढ़ाता है। वह अपने बारे में हमारे ज्ञान को संबंधात्मक रूप से बढ़ाता है, क्योंकि वह एक वास्तविक जीवित प्राणी है जो पारलौकिक और अनंत है, लेकिन वह उन सभी के लिए व्यक्तिगत और आंतरिक भी है जो मसीह में विश्वास के माध्यम से उसे जानते हैं। और यह हमारे व्यवहार को भी बदलता है। इसलिए एक यूहन्ना को देखते समय इन तीन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये सभी परमेश्वर द्वारा सुसमाचार संदेश के माध्यम से किए जा रहे कार्य का हिस्सा हैं। खैर, जब हम एक यूहन्ना को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वह अपने अधिकार और अपने उद्देश्य की घोषणा करता है, जो कि शुरू से था, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा है, जिसे हमने देखा है और जिसे हमने अपने हाथों से छुआ है, जीवन के वचन के बारे में। और हम देखेंगे कि जीवन का यह वचन यीशु मसीह है। जीवन प्रकट हो गया, वह दृश्यमान हो गया, वह प्रकाशित हो गया, और हमने इसे देखा है और इसकी गवाही दी है। यह यूहन्ना और अन्य शिष्य हैं जिन्होंने यीशु को देखा। और हम आपको उस अनंत जीवन की घोषणा करते हैं जो पिता के साथ था, अर्थात अवतार से पहले परमेश्वर का पुत्र और हमारे लिए प्रकट हुआ। उसने कुवारी मरियम के द्वारा शरीर धारण किया और आकर जीवित हो गया। जो हमने देखा और सुना है हम तुम्हें भी बताते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ संगति करो। और वास्तव में हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और हम ये बातें इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। अब आप देखेंगे कि जब मैं बाइबल की इन आयतों को पीले रंग में उद्धृत करता हूँ तो पिता या पुत्र या ईश्वर या यीशु या मसीह या आत्मा के लिए शब्द, अगर यह पवित्र आत्मा है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने इसे पूरी किताब में किया है, मैंने उन्हें लाल रंग में रखा है ताकि हमें एक यूहन्ना में ईश्वर के संदर्भ की प्रधानता की याद दिला सकूं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में कहा था, लोग सामाजिक सेटिंग और लोगों के बीच संबंधों में फंस जाते हैं और लोग भूल जाते हैं कि यूहन्ना जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है वह ईश्वर है। तो यह एक ईश्वर केंद्रित और मसीह केंद्रित पुस्तक है, न कि एक मानव केंद्रित पुस्तक जो मुख्य रूप से लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में बात करती है। लेकिन उन आयतों में जो हमने अभी पढ़ी हैं, हम देखते हैं नंबर एक कि अवतार सच्चा और वास्तविक है। पुत्र का पिता में और उसके साथ अस्तित्व था। वे एकजुट हैं। वे एक हैं। दो या तीन भगवान नहीं हैं, भगवान एक है। लेकिन वह ईश्वर जो स्पेस्टाइम और पदार्थ से परे मौजूद है और पारलौकिक है, वह अपने भीतर एक रिश्ता रखने वाला ईश्वर है। और अपनी समृद्धि और परिपूर्णता में ईश्वर का पुत्र, जिसे हम त्रिदेवों का दूसरा व्यक्ति कहते हैं, ने देह धारण की और जन्म लिया। और यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने क्या देखा और क्या छुआ और क्या देखा और क्या छुआ और सुना। ध्यान दें, दूसरी बात, जॉन का मानना है कि प्रत्यक्षदर्शी ही पर्याप्त सबूत हैं। मूसा ने सिखाया और परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि दो या तीन गवाहों के मुंह से तथ्यों की पुष्टि होनी चाहिए। एक गवाह किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कई गवाहों से पुष्टि हो सकती है। और इसलिए वहां कई गवाह थे दोनों शिष्यों के संदर्भ में, लेकिन साथ ही परमेश्वर की खुद की गवाही के संदर्भ में भी, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना अध्याय 5 में सिखाया है। वह अपनी पहचान के सभी गवाहों के बारे में बात करता है। शास्त्र की गवाही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, पिता की गवाही, उसके महान कार्यों की गवाही, ये और अन्य अभिव्यक्तियां पर्याप्त सबूत हैं। लोग जो देखते हैं उसे नकार सकते हैं, लेकिन वे यीशु की सच्ची पहचान के लिए पर्याप्त सबूत हैं। और फिर एक लक्ष्य है जिसे यूहन्ना व्यक्त करता है, और वह लक्ष्य है आनंदपूर्ण संगति। हम ये बातें इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। बहुत से लोग धर्म को लेकर असहज हैं और वे ईसाई धर्म के बारे में सोचने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उत्साह को खत्म कर देता है। लेकिन वास्तव में मनुष्य के रूप में हम जो सबसे गहरी संतुष्टि पा सकते हैं वह इस दुनिया में और अगले जीवन के लिए अपने ईश्वर के साथ शांति से रहना है। और यही वह पूर्ण आनंद है जिसका वादा यीशु ने किया था, और यही आनंद है जिसका नमूना यूहन्ना दशकों से ले रहा है जब वह यह लिख रहा है, और यही वह आनंद है जिसकी वह पाठकों को प्रशंसा करता है। फिर हमें पत्र का मुख्य बोझ मिलता है जो परमेश्वर का चरित्र है। यह वह संदेश है जो हमने उससे सुना है और जिसे हम आपको सुनाते हैं। तो उन पिछले चार श्लोकों को संक्षेप में कहें तो परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है, और यह बस इतना ही कह रहा है कि परमेश्वर का एक गुण है, परमेश्वर की एक गतिविधि है। आप जानते हैं, वह गुण पवित्रता है। वह अपनी दिव्य महिमा में मनुष्य नहीं है। ईश्वर अद्वितीय है। ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मसीह में मानव रूप धारण किया, लेकिन ईश्वर स्वयं अंतरिक्ष में कहीं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक रहस्यमय, पारलौकिक, गौरवशाली प्राणी है, और प्रकाश एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर शास्त्रों में ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक चकाचौंध करने वाली चमक होती है। जब सृजित संसार में ईश्वर की उपस्थिति की झलक भी मिलती है, तो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। कभी कभी वे अपने चेहरे पर गिरते हैं, और प्रकाश उनकी पवित्रता का प्रतीक है, प्रकाश उनकी उत्कृष्टता का प्रतीक है, प्रकाश उनकी पूर्णता का प्रतीक है, प्रकाश हम जो हैं उससे उनकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। हम सृजित प्राणी हैं। वह कोई सृजित प्राणी नहीं है। वह एक शाश्वत प्राणी है, और फिर वह एक ईश्वर है जो कार्य करता है। वह कार्य करता है, और इन कार्यों का उस समुदाय पर प्रभाव पड़ता है जिसे जॉन संबोधित करता है। यदि ईश्वर प्रकाश है और वह है, तो उस समुदाय में कुछ चीजें चल रही हैं जिन्हें जॉन लिख रहा है, जिन कलीसियाओं को वह लिख रहा है। ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो ईश्वर के प्रकाश होने के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। अगर आप ईश्वर का अनुसरण करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं या ऐसा सिखा रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए जॉन कहते हैं, मैं यह कहकर शुरुआत करना चाहता हूं कि ईश्वर यही है। हम इसी से निपट रहे हैं। यही संदेश है और बाकी सब कुछ इसी से निकलेगा। हम कह सकते हैं, यह ईश्वर की प्रकृति और क्रियाकलाप का धार्मिक आधार है। ईसाई जीवन के लिए ईश्वर के चरित्र के निहितार्थ हैं। यदि हम कहते हैं कि अंधकार में चलते हुए भी हम उसके साथ संगति करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पाप कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं और हम सत्य का पालन नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम प्रकाश में चलते हैं जैसा कि वह प्रकाश में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और यीशु उसके पुत्र का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पाप नहीं है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और सत्य हमारे अंदर नहीं है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह विश्वासयोग्य और न्यायी है और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करता है। पद 10, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। उन पदों के बारे में दो टिप्पणियां पद 6, 8 और 10 परमेश्वर के झूठे स्वीकारोक्ति को दर्शाती हैं। ईश्वर प्रकाश है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, जाहिर है, और फिर वे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई समस्या है। वे अपने पाप से इनकार कर रहे हैं। और एक यूहन्ना का बहुत सारा हिस्सा परमेश्वर कौन है और कौन से लोग या तो इन कलीसियाओं में हैं, या जिन्होंने इन कलीसियाओं को छोड़ दिया है, या जो इन कलीसियाओं को प्रभावित कर रहे हैं, वे बातें सिखा रहे हैं, वे कुछ ऐसे तरीकों से काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की प्रकृति के साथ तालमेल नहीं रखते। इन आयतों से एक और अवलोकन, और यह कुछ सकारात्मक है। आयत 7 और 9 परमेश्वर के साथ सच्ची संगति की ओर इशारा करते हैं। आयत 7 प्रकाश में चलने के बारे में बात करती है। यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यह परमेश्वर के साथ रिश्ते के प्रति प्रतिक्रिया करना होगा। यह परमेश्वर के बारे में सत्य पर विश्वास करना होगा। यदि हम ज्योति में चलें, जैसे वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। और जो पाप हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, वे यीशु के लहू से निपट जाते हैं। वह हमें शुद्ध करता है। और यह इस धारणा पर आधारित है कि हम अपने पाप के प्रति सचेत हैं, और जैसे ही हम सचेत होते हैं हम इसे स्वीकार करते हैं। श्लोक 9, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना के इस भाग का अंतिम भाग, जिसका केंद्रीय बोझ परमेश्वर की प्रकृति और कार्य है, और यह कि यूहन्ना जिस समुदाय को संबोधित करता है उसमें इसे कैसे प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, यह परमेश्वर के चरित्र के प्रकाश में पाठकों के लिए एक अपील है। मेरे छोटे बच्चों, यह एक पादरी का संदर्भ है। वह इन लोगों से प्यार करता है। उसका दिल उनके लिए दुखी है। वह उनके प्रति प्रतिबद्ध है। वह उनकी परवाह करता है। इसलिए मेरे छोटे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम पाप न करो। वह नहीं चाहता कि उसके पाठक उस अंधकार के दोषी हों, जिसका उसने अभी अभी उल्लेख किया है कि इस समुदाय में या इसके आसपास के कुछ लोगों में यह अंधकार मौजूद है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम पाप न करो। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के पास एक वकील है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। वह धर्मी है, एकमात्र मनुष्य जो इस धरती पर रहा है और जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, उसके नियम को नहीं तोड़ा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। यह अधिवक्ता पिता के दाहिने हाथ पर है, क्योंकि वह मर गया और पाप और मृत्यु को हरा दिया, और वह पिता के दाहिने हाथ पर चढ़ गया और उस स्थान से परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता करता है। वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु ने परमेश्वर के न्याय या परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट किया। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। जो आत्मा पाप करती है वह मर जाएगी। इसलिए हमारे पाप के कारण न्याय होगा जब तक कि हम किसी को हमारे लिए न्याय करने के लिए न बुलाएं, और यही यीशु ने किया। और इसके लिए तकनीकी शब्द है प्रायश्चित। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित, और केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के पापों के लिए। और इससे हम जानते हैं कि हमने उसे जान लिया है यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में चलते हैं। श्लोक 4, जो कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूं परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यदि आप उस आरेख X, Y और Z आरेख पर वापस विचार करते हैं तो X विश्वास की रेखा है। मैं मसीह में विश्वास करता हूं या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। जेड प्रेम की रेखा है। मैं मसीह में विश्वास करता हूं और मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूं। जॉन कहते हैं कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप झूठे हैं और सच्चाई आप में नहीं है। जो कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूं परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है। परंतु जो कोई उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं। इस तरह हम जान सकते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई कहता है कि वह उसमें रहता है उसे उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह वह चला था। अब बेशक वह यहां मसीह के चलने, पाप रहित जीवन, सेवा के जीवन, प्रेम के जीवन, आराधना के जीवन, यीशु की ईमानदारी के जीवन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए 1 यूहन्ना के पहले खंड पर अपनी त्वरित नजर को समाप्त करने के लिए हम इन अंतिम कुछ आयतों से सीख सकते हैं। नंबर 1, उचित लक्ष्य यह है कि विश्वासी पाप न करें। वह इसलिए लिख रहा है ताकि हम पाप न करें। पाप और मृत्यु उस मसीही पर हावी नहीं हो सकते जो प्रभु के साथ एकता में रह रहा है। अगर हम पाप करते हैं तो अनुग्रह का एक तरीका है। हम इसे स्वीकार कर सकते हैं और हमें इसके लिए क्षमा किया जा सकता है। वह कहते हैं कि मसीह केवल हमारे पापों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा। और लोग इस बात पर बहस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, और मैं बस इतना ही कहने जा रहा हूं कि निश्चित रूप से जब यह हमारे पापों के लिए मरने की बात करता है तो यह उन लोगों के लिए मरने की बात करता है जो मसीह में विश्वास करते हैं और बचाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता जब तक कि उसके पापों का भुगतान न किया जाए, और मसीह ने हर समय उन सभी विश्वासियों के पापों का भुगतान किया जो विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध में आते हैं। इसलिए मैं इसे विशेष अनुग्रह लाभ कहता हूँ, मसीह की मृत्यु के माध्यम से उद्धार का विशेष अनुग्रह। लेकिन जॉन कहते हैं कि यह पूरी दुनिया के पाप भी हैं, और कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में विश्वास करने वाले लोग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी दुनिया के लिए मरा, और वे सही हो सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि ठीक है, मसीह की मृत्यु से एक सामान्य अनुग्रह लाभ है। तथ्य यह है कि मसीह पुराने नियम के युग में पापों के लिए मरने जा रहा था और नए नियम के युग से पापों के लिए मर गया है। मसीह के मिशन के कारण और क्योंकि परमेश्वर लोगों के लिए उद्धार के लिए द्वार खुला रखता है, परमेश्वर का न्याय हर किसी पर नहीं आता है। परमेश्वर अपने न्याय के हाथ को तब तक रोकता है जब तक कि समय की परिपूर्णता नहीं आ जाती और मसीह वापस नहीं आ जाता। इसलिए मुझे लगता है कि जब वह पूरी दुनिया के पापों की बात करता है तो वह बस यह कह रहा है कि पूरी दुनिया को लाभ है, चाहे दुनिया यीशु पर विश्वास करे या न करे। यह हम सभी के लिए अच्छी बात है कि वह आया और पापों के लिए मर गया, और दुनिया के लिए उसके मंत्रालय की वजह से यह दुनिया अभी भी चल रही है, और जो कोई भी संदेश सुनता है और उस पर विश्वास करना चाहता है उसके लिए अभी भी अनुग्रह का दिन है। नंबर 3, ईश्वर के साथ संगति या मसीह के साथ संगति का अर्थ है आज्ञाओं में व्यक्त ईश्वर की इच्छा का अनुपालन। यहाँ उसकी इच्छा के साथ उसका शब्द जोड़ने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि अगर हम ईश्वर के साथ संवाद करने का दावा करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ईश्वर है जिसने हमें कुछ आज्ञाएं दी हैं और हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। और अंत में ईश्वर का प्रेम और ईसाई आश्वासन यीशु की तरह जीने से पुष्ट होता है। अब बेशक एक सादृश्य है, हम में से कोई भी यीशु की तरह नहीं जी सकता, इस अर्थ में कि हम कभी पाप नहीं करते या हम कुंवारी से पैदा हुए हैं या हम स्वर्ग से आए हैं या हम अपनी मृत्यु के द्वारा क्रूस पर मृत्यु के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यीशु के लिए अद्वितीय हैं, जिनका हम अनुकरण नहीं कर सकते और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम मसीहा नहीं हैं, वह मसीहा थे, लेकिन कई तरीकों से हम मसीह की तरह जीने की कोशिश कर सकते हैं, सेवा के मामले में, ईश्वर के प्रति श्रद्धा के मामले में, ईश्वर की खोज के मामले में, प्रार्थना जीवन के मामले में, बच्चों के प्रति सम्मान के मामले में, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दें। जीवन में मसीह में मौजूद परमेश्वर की दयालुता भलाई को दर्शा सकते हैं। और इसलिए यह एक यूहन्ना की शुरुआत है, उसका मुख्य बोझ। परमेश्वर प्रकाश है और उसके लोगों के लिए इसका निहितार्थ है। यह डॉक्टर रॉबर्ट यारबोरो और जोहानिन एपिस्टल्स बैलेंसिंग लाइफ इन क्राइस्ट पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 5:1 जॉन फुलस्केल फेथ सेक्शन 1:1:1 से 2:6 सेंट्रल बर्डन है।